Hare Krishna. So we'll start with the kirtan. Nom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare.
Thank you.
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, बाल गोपाल श्रीनाथ जी भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Okay, so thank you very much for joining us on Saturday evening. Especially today is a special occasion of Akshaya Tritiya. So I hope everybody is familiar with what is Akshaya Tritiya and what is the significance of that. And we plan to speak on the importance of Akshaya Tritiya actually today. And I'm thinking of having today's session in Hindi. We'll start with invocation prayer. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणिं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महाविदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरक्षे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है, इसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और सबको पता होगा कि अक्षय तृतीया का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जहां पर कुछ भी करने के लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। कोई भी काम जब किया जाए इस दिन को तो बहुत शुभ रहता है और उसका जो फल होता है वो कई गुना अधिक फल मिलता है। और एक्चुअली अक्षय का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता। क्षय का मतलब है जो खत्म होता है, और अक्षय का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। तो अक्षय तृतीया वो दिन जहां पर कुछ भी करने पर, जो भी कार्य किया जाता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता और बहुत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन
हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन, ऑस्टेरिटीज, तो ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फल है वो अक्षय है। तो साल में, पूरे वर्ष में 4 ऐसे दिन आते हैं जब कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता, बिना कोई मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। पूरा वर्ष अगर हम देखें तो कोई भी अगर कार्य करना है तो उसके लिए पहले पंचांग देखना पड़ेगा, उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। किसी को शादी करनी है तो उसके लिए मुहूर्त देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त शुभ है जब शादी का लग्न होगा, कौन सा मुहूर्त है जब कोई अच्छा काम स्टार्ट किया जाए, कोई नया बिजनेस या कुछ नई ऐसी चीज शुरू की जाए, तो हर चीज के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। पर वर्ष में 4 दिन ऐसे आते हैं जब बिना कोई मुहूर्त निकाले कोई भी कार्य किया जा सकता है। और ये 4 दिन कौन से हैं? पहला दिन गुड़ी पड़वा, जो चैत्र मास का पहला दिन, जिसको तेलुगु में, मराठी में नव वर्ष के नाम से मनाया जाता है। नव वर्ष, उसमें नया साल का आरंभ होता है, गुड़ी पड़वा। तो वो इतना शुभ दिन है कि बिना कुछ मुहूर्त निकाले कुछ भी कार्य किया जा सकता है। और दूसरा दिन आता है विजयदशमी। विजयदशमी क्या है? जब भगवान राम ने रावण का वध किया, रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, तो वो है विजयदशमी। तो वो भी एक ऐसा शुभ दिन है जहां पर कुछ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। तीसरा दिन कार्तिक मास का पहला दिन, हम लोग जानते हैं जो कार्तिक मास आता है अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम, तो जिसमें भगवान की दामोदर लीला है, हम पूरा महीना भगवान की दामोदर लीला के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो कार्तिक मंथ का पहला दिन है वो भी बहुत शुभ माना जाता है, जिसमें कुछ भी मुहूर्त निकाले बिना कुछ भी कार्य किया जा सकता है। और चौथा दिन साल में वो है अक्षय तृतीया, जो कि आज का दिन। तो अक्षय तृतीया को भी कुछ मुहूर्त निकाले बिना कुछ भी कार्य करो तो उसका अक्षय फल है, इनएग्जॉस्टिबल रिजल्ट। तो जनरली लोगों की मेंटेलिटी या जो माइंडसेट बना हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी नए कार्य का आरंभ किया जाए, किसी को अपना घर खरीदना है, घर की डील क्लोजिंग करनी है, कुछ नया व्यवसाय शुरू करना है, कुछ रिचुअलिस्टिक कार्य करना है, तो लोगों को लगता है कि ये अक्षय तृतीया का दिन उसके लिए बहुत शुभ है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो अक्षय तृतीया के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म कार्यों में लगना चाहिए। संसार में कुछ भी अन्य कार्य है उसका कभी ना कभी तो नाश होगा। जो मर्जी हम इस संसार में कार्य करें उसका कभी तो नाश होगा। ये संसार इटसेल्फ, जो भौतिक जगत है, वो नाशवान है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं दुखालय अशाश्वतम, कि ये जो भौतिक संसार है वो दुखालय है और ये अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, अशाश्वत है, इसका नाश होता रहता है। कुछ भी हमें सुख मिले, कुछ भी दुख मिले, वो कभी परमानेंट नहीं रहता। और ये भौतिक जगत है भी दुखों का घर। जैसे हम डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड पढ़ते हैं, औषधालय, विद्यालय, हिमालय, वैसे ही ये संसार, इसको भगवान ने अपना एक सर्टिफिकेट दिया है कि ये दुख आलय है, दुखों का घर है। हिमालय मतलब जो हिम का घर, बर्फ का घर, औषधालय मतलब औषधि का घर, दवाई का घर, विद्यालय मतलब विद्या का घर, जहां पर विद्या दी जाती है। उसी तरह जो जो भौतिक जगत है वो है दुख आलय। इसमें हर चीज नाशवान है, कोई भी चीज परमानेंटली स्थायी नहीं है। तो जो भी इस जगत में कार्य किया जाए उसका फल टेम्परेरी होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, पर जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाए उसका फल मल्टीफोल्ड, बहुत ज्यादा गुना होकर उसका फल मिलेगा। तो अक्षय तृतीया की ऐसी क्या खास बात है? अक्षय तृतीया के दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है? अक्षय तृतीया के दिन क्या-क्या घटनाएं हुई हिस्ट्री में जो इसको एक स्पेशल दिन बनाती हैं? तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अक्षय तृतीया के दिन हुई, जिसकी वजह से ये दिन बहुत स्पेशल माना जाता है। तो पहली घटना भगवान परशुराम का जो अपीयरेंस डे है वो अक्षय तृतीया के दिन आता है। तो भगवान परशुराम जो कि भगवान का एक अवतार है जो 10 अवतारों में भी गिने जाते हैं, तो उनका जो प्राकट्य दिवस है वो भी अक्षय तृतीया के दिन है। और भगवान परशुराम की लीला हम सब लोग जानते हैं कि बहुत अद्भुत लीला है। भगवान परशुराम का जन्म कैसे हुआ वो भी इट्सेल्फ इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू अंडरस्टैंड। तो जो परशुराम के पिता थे उनका नाम था जमदाग्नि और उनकी माता का नाम रेणुका, और जो जमदाग्नि के फादर थे उनका नाम था रुचिक ऋषि और उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती। तो जो रुचिक ऋषि हैं अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम में रहते थे, खूब जप तप करते थे। तो उनके घर पे उनके आश्रम में उनको जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने एक यज्ञ का आह्वान किया, उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप एक स्पेशल पायसम बनाकर अपनी पत्नी को देना चाहा। और उन्हीं दिनों उनकी पत्नी की जो माता थी वो भी उनके आश्रम पे आई हुई थी रहने के लिए। तो रुचिक ऋषि की जो मदर इन लॉ सासू माँ और उनके जो ससुर थे वो एक्चुअली एक राजा रानी थे, एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनकी जो सासू माँ थी वो भी उनके आश्रम पे रह रही थी, और जब रुचिक ऋषि ने इस यज्ञ का हवन किया तो उनकी सासू माँ ने उनकी पत्नी की माता ने भी ये इच्छा प्रकट की कि एक्चुअली मैं भी एक पुत्र प्राप्ति करना चाहती हूं, तो आप मेरे लिए भी इस यज्ञ में हिस्सेदारी कीजिए, इस यज्ञ का जो फल मिलेगा उसमें आप मुझे भी हिस्सा दीजिए। तो रुचिक ऋषि ने कहा ठीक है, तो मैं आपके लिए भी यज्ञ करूंगा, आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। तो उन्होंने उस यज्ञ के फल स्वरूप 2 बाउल, जो 2 कटोरे थे पायसम के, खीर के, वो फल स्वरूप प्राप्त किए। तो यज्ञ की समाप्ति के बाद वो अपनी पत्नी के पास आए, अपनी सासू माँ के पास आए और दोनों को अपना अपना पात्र दिया खीर का, पायसम का। और उसको पात्र देने के बाद वो अपना स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जो उनकी पत्नी की माता थी, सत्यवती की जो माता थी, उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि रुचिक ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए कुछ स्पेशल खीर का पात्र तैयार किया होगा, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी, उसमें से कुछ स्पेशल गुण डाले होंगे ताकि उनका जो पुत्र हो उसमें खूब अच्छे अच्छे गुण हो, पर हो सकता है मेरे लिए उन्होंने इतना स्पेशल पायसम तैयार नहीं किया होगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री को यही जिज्ञासा किया कि तुम मेरे साथ अपना पात्र एक्सचेंज करो, कि आपका जो खीर का पायसम है, आपका खीर का जो पात्र है वो आप मुझे दे दो और मेरा जो पात्र है वो आप ले लो। और नेचुरल जो सत्यवती थी अपनी माता के प्रति प्रेम के वश से उन्होंने अपना पात्र एक्सचेंज कर लिया। अब जो जब रुचिक ऋषि हैं उन्होंने स्पेशल क्वालिटी के हिसाब से दोनों का अलग अलग जो पायसम था वो यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त किया था, क्योंकि रुचिक ऋषि ब्राह्मण है तो उन्होंने अपने पुत्र में ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के हिसाब से प्रार्थना की थी, और जो उनकी सासू माँ थी वो क्षत्रिय है, वो एक रानी है, तो उनके घर पे एक क्षत्रिय पुत्र का जन्म हो इसलिए उन्होंने उस हिसाब से उसमें वो क्वालिटीज के प्रार्थना किया था। पर जब उन्होंने अपना पात्र एक्सचेंज कर लिया तो वो क्वालिटीज भी एक्सचेंज हो गई। और जब रुचिक ऋषि वापस आए उन्हें इस घटना का पता चला कि उन्होंने इस तरह से अपने अपने पात्र एक्सचेंज कर लिए हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उनको बताया कि आपके लिए मैंने एक क्षत्रिय पुत्र की कामना की थी और हमारे घर पे हमने एक ब्राह्मणिकल पुत्र की कामना की थी, पर आपकी वजह से अभी ये सब उल्टा हो गया। अभी आपके घर पे एक ब्राह्मण पुत्र पैदा होगा जिसको राजकार्य में कुछ रुचि नहीं होगी, वो संन्यास की ओर चला जाएगा, और हमारे घर पे जो एक पुत्र पैदा होगा उसमें क्षत्रिय के गुण होंगे। और जब उनको ये पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने रुचिक ऋषि से बहुत प्रार्थना की कि आप उसको एक्सचेंज कर दीजिए, फिर से उसका जो इफेक्ट है उसको रिवर्स कर दीजिए। और रुचिक ऋषि ने कहा कि नहीं, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी ऑलरेडी ये आपने कर दिया है तो उसको मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो सत्यवती ने प्रार्थना किया कि अगर मेरा पुत्र क्षत्रिय क्वालिटीज का पैदा होगा, उसकी जगह पर आप इतना कर दीजिए कि मेरा पुत्र ब्राह्मण ही पैदा हो और मेरे पुत्र का जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय क्वालिटीज से पैदा हो। और जब सत्यवती ने इस तरह से प्रार्थना किया रुचिक ऋषि को, तो उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि जो आपका पुत्र है वो तो ब्राह्मण गुण से ही पैदा होगा, पर उनके पुत्र का जो पुत्र होगा उसके अंदर क्षत्रिय गुण होंगे। पर जो सत्यवती की माता का पुत्र जन्म लेगा, शुरू के अंदर उसमें क्षत्रिय के क्वालिटीज होंगे, क्षत्रिय के गुण होंगे, वो राजकाम अपना संभालेंगे, पर फिर बाद में वो अपना सब राजकाज त्याज कर, अपना राज्य त्याग कर वनवास ग्रहण करेंगे, संन्यास ग्रहण करेंगे और बहुत बड़े ऋषि बनेंगे। तो जो सत्यवती की माता हैं, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चल के विश्वामित्र बने। तो विश्वामित्र अपने स्टार्टिंग डेज में ही बहुत अच्छे राजा थे, बहुत पावरफुल राजा थे, पर फिर बाद में उन्होंने बहुत तप किया और ब्रह्म ऋषि के नाम से जाने गए। तो इधर सत्यवती ने, रुचिक ऋषि की पत्नी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो हुए जमदाग्नि, और जमदाग्नि के पुत्र हुए परशुराम। तो जो परशुराम जी थे उनके अंदर बोला जाता कि बहुत क्रोध का समावेश था, उनके अंदर जो क्षत्रिय गुण थे बहुत ज्यादा थे। तो एक बार जमदाग्नि के आश्रम में सहस्रबाहु कृतवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ आया अपनी विजय यात्रा से लौटते हुए, और जमदाग्नि ने उनको कहा कि आप हमारे आश्रम पे रुकिए, हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए, हम भी आपकी प्रजा हैं और प्रजा का कर्तव्य है कि अपने राजा की सेवा करे, तो आप यहां पर रुकिए अपनी सेना सहित और हम आपके लिए सब भोजन सामग्री का प्रबंध करेंगे। तो सहस्रबाहु अर्जुन, उसने सोचा कि ये ठहरे एक ब्राह्मण, एक वन में रहने वाले साधु, इनके आश्रम में इतनी क्या सुविधा होगी कि ये हमारी पूरी सेना को खाना खिला सके। पर जमदाग्नि के पास एक बहुत खास गाय थी, कामधेनु गाय, जो कुछ भी प्रकट कर सकती थी अपनी इच्छा स्वरूप। तो जमदाग्नि ने उनकी पूरी सेना के लिए खाने का पूरा प्रबंध कर दिया, और जब कृतवीर्य अर्जुन को इस बात का पता चला उनको बहुत आश्चर्य हुआ, पर उनके मन में ये इच्छा आई कि जो भी ये गाय है, स्पेशल गाय, वो मेरे पास होनी चाहिए, मेरे राजकोष में होनी चाहिए। तो उन्होंने जबरदस्ती उस गाय को छीनने की कोशिश की जमदाग्नि से, और वो जो गाय को छीन कर ले गए, और जमदाग्नि ने जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने जमदाग्नि का की हत्या कर दी। और परशुराम जब वापस आए, उस समय वो अपने आश्रम में नहीं थे, और जब उन्हें इस घटना का पता चला कि कैसे सहस्रबाहु कर्तव्य अर्जुन, उन्होंने जबरदस्ती कामधेनु को छीनना चाहा और मेरे पिता का हत्या कर दिया, तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे धरती को क्षत्रियों से वंचित कर दूंगा। तो इसलिए परशुराम जी ने 21 बार पूरी पृथ्वी पर घूमते हुए उसको नक्षत्री कर दिया। नक्षत्री मतलब पूरे जो क्षत्रिय वंश है उनका संहार कर दिया। पर उनका एक प्रण था कि जो भी क्षत्रिय उस समय पर शादी कर रहा होगा या शादी के अरेंजमेंट्स में होगा उसको वो क्षमा कर देंगे, उसको उसका वध नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे राजा ऐसे थे जो जैसे ही उनको पता चलता कि परशुराम जी हमारे राज्य की तरफ आ रहे हैं बड़े क्रोध में, तो उसी समय वो अपना कुछ ना कुछ शादी करने का प्रबंध कर लेते, शादी के मंडप में बैठ जाते। तो एक्चुअली कहा जाता है कि महाराज दशरथ ने भी बहुत सारी शादियां की उस तरह से परशुराम जी के क्रोध से बचने के लिए। तो हम जानते हैं कि महाराज दशरथ की तीन मुख्य पत्नियां थी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, पर इसके सिवा एक्चुअली दशरथ महाराज की अनेक अदर और भी पत्नियां थी। तो परशुराम जी का जो जन्म है इस पर्टिकुलर दिन पे हुआ, ये परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है, अक्षय तृतीया, जो कि भगवान के एक अवतार भी हैं। और इसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन, सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र दान दिया। तो ये कथा क्या आती है कि महाभारत में हम जानते हैं कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में द्वित क्रीड़ा हुआ, डाइस का मैच हुआ, तो उसमें कौरवों ने दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को छल पूर्वक हराया, और उसके बाद उनको 12 वर्ष के लिए वनवास जाना था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो 12 वर्ष का अज्ञातवास के लिए जब युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं हस्तिनापुर से, तो वो उनके जाने के समय पर बहुत सारे जो प्रजा थी वो भी महाराज के, युधिष्ठिर महाराज के 5 पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। बहुत सारे ब्राह्मण भी उनके साथ जाने के लिए इच्छुक हुए कि हम भी आपके साथ वन में चलेंगे और आपके प्रजा की तरह हम आपके साथ वन में रहेंगे। और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि हमारे पास तो अपने लिए भी खाने का प्रबंध नहीं है, और अगर ये सब प्रजा, इतने सब ब्राह्मण साधु लोग हमारे साथ वन में रहेंगे तो उनको हम कहां से खिलाएंगे, क्योंकि वो हमारी प्रजा हैं, हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की देखभाल करें, और हम अपनी प्रजा को कैसे खिला पाएंगे वन में रहते हुए। और जब युधिष्ठिर महाराज का इस तरह का शोक हो रहा था, तो उस समय सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज के धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को देखकर उन्हें एक पात्र प्रदान किया, और उस पात्र को हम बोलते हैं अक्षय पात्र। उस पात्र की जो खासियत है, जो स्पेशियलिटी है, वो क्या है कि अक्षय पात्र जो चाहे वो भोजन सामग्री उपलब्ध करवा सकता है, पर उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि जब तक द्रौपदी अपना खाना नहीं खा लेगी तब तक ये अक्षय पात्र भोजन सामग्री देता रहेगा। पर उस पर्टिकुलर दिन पे जब द्रौपदी ने भी अपना भोजन ग्रहण कर लिया है, उसके बाद अक्षय पात्र अगले दिवस तक कुछ और भोजन सामग्री नहीं देगा। तो इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज को ये पात्र मिला, तो वन में रहते हुए वो अपनी पूरी प्रजा, जो भी लोग वहां पर रह रहे थे, तो पहले वो ब्राह्मणों को बुलाते, उनको भोजन कराते, फिर युधिष्ठिर महाराज स्वयं भोजन करते, फिर सब बाकी पांडव उनके भाई भोजन करते, और अंत में द्रौपदी वो अपना भोजन ग्रहण करती। तो जो अक्षय पात्र का जो दान था युधिष्ठिर महाराज को, जो अक्षय पात्र का गिफ्ट था, वो अक्षय तृतीया के दिन मिला। और हम लोग एक और कथा जानते हैं इस अक्षय पात्र के संबंध में, कि कैसे दुर्योधन ने ईर्ष्या पूर्वक पांडवों को नीचा दिखाने के लिए एक बार दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास भेजा। तो हुआ ये कि दुर्वासा मुनि एक बार हस्तिनापुर में आए अपने सब शिष्यों सहित, और दुर्योधन ने उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत सेवा की। और जब दुर्वासा मुनि ने बोला कि मैं आप तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ इच्छा अपनी कुछ वरदान मांगो, तो दुर्योधन ने दिखावा के सब रूप उनके बोला कि मुझे अपने जो पांडव भाई हैं उनके प्रति भी बहुत प्रेम है, मैं चाहता हूं कि आप उनके घर पर भी चाहिए, उनको भी सेवा का अवसर दीजिए कि वो भी आपकी सेवा का लाभ उठा सके। एक्चुअली दुर्योधन का जो प्लान था वो क्या था कि दुर्वासा मुनि पांडवों के पास जाएंगे अपने 10,000 शिष्यों सहित, और पांडव दुर्वासा मुनि की सेवा नहीं कर पाएंगे और क्रोध में आकर दुर्वासा मुनि उनको श्राप दे देंगे। तो इस छल पूर्वक दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास जाने का निवेदन किया। और जब दुर्वासा मुनि पांडवों के पास वन में पहुंचे, उनके जो उनकी कुटिया थी उसके करीब पहुंचे, तो उन्होंने संदेश भेजा कि मैं अपने 10,000 शिष्यों सहित आपकी कुटिया में भोजन के लिए आ रहा हूं, तो मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। और जब युधिष्ठिर महाराज ने यह सुना तो उनको बड़ी ग्लानि हुई हृदय में, उनको बड़ा दुख हुआ कि आज के दिन में हमने अपना भोजन ग्रहण कर लिया है और अक्षय पात्र तो अभी और कुछ भोजन उपलब्ध कराएगा नहीं। वो इमिडिएटली द्रौपदी के पास आए, उनसे पूछा कि अक्षय पात्र मतलब क्या हमारी रसोई घर में कुछ उपलब्ध है कि नहीं। और द्रौपदी ने एंग्जाइटी में उस पात्र में देखा कि अभी तो इस पात्र से कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता हुई कि दुर्वासा मुनि को हम कैसे खिला पाएंगे। उस समय द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया कि आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, इस कष्ट की स्थिति में, इस मुसीबत की स्थिति में भी आप हमारी रक्षा कीजिए। और उनके मन में भगवान का स्मरण करते ही भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए, और उन्होंने द्रौपदी से बोला कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन करवाओ। अभी द्रौपदी ने बोला हमारे ऊपर तो पहले ही संकट आया हुआ है कि दुर्वासा मुनि को उतने उनके 10,000 शिष्यों सहित कैसे भोजन कराएं, और आप भी आकर भोजन ही मांग रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि अक्षय पात्र में देखो, तुम्हारे पात्र में कुछ तो बचा हुआ होगा। और द्रौपदी ने फिर से पात्र के अंदर देखा तो उनको पात्र के नीचे एक आधा टुकड़ा चावल का दिखाई दिया। उन्होंने वो आधा टुकड़ा निकालकर भगवान कृष्ण को अर्पण किया कि सिर्फ यही उपलब्ध है, अगर इससे आपकी तृष्णा शांत हो सकती है। तो भगवान ने वो जो ऑफरिंग, आधे राइस के दाने की, चावल के दाने की ऑफरिंग थी, उसको अपने मुंह में डाला और बोले कि मैं इससे तृप्त हो गया, और पूरा संसार, पूरा जगत तृप्त हो गया। और भगवान के ऐसा बोलते ही, ऐसा करते ही दुर्वासा मुनि, जो उस समय स्नान करने के लिए गए हुए थे अपने 10,000 शिष्यों सहित, उनको लगा कि जैसे उनकी पूरी तृप्ति हो गई, उनका जो पेट है पूरी तरह से भर गया है, उनको और कुछ खाने की इच्छा नहीं है, उनको ऑलरेडी डकार आ रहे हैं अच्छे अच्छे व्यंजन के, उनको लग रहा है अभी अभी हमने जैसे खीर खाई हो। तो सब शिष्यों का भी वही स्थिति था। तो उन्होंने बोला कि अगर हम युधिष्ठिर महाराज के कुटिया में नहीं जाएंगे, हमने ऑलरेडी उनको बोला कि हम आपकी कुटिया में भोजन के लिए आ रहे हैं, पर अभी हमारे अंदर भोजन कुछ भी एक निवाला और मुंह में डालने की क्षमता नहीं है, इस स्थिति में अगर हम जाएंगे और भोजन करने से इनकार करेंगे तो ये उनके प्रति एक तरह से अपमान होगा, तो इसलिए अच्छा है कि हम चुपचाप यहां से निकल जाएं। और दुर्वासा मुनि उस समय वहां से चुपचाप वापस चले गए। तो ये अक्षय पात्र के संबंध में बहुत एक रोचक घटना जो हम महाभारत में पढ़ते हैं, कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र का दान प्राप्त हुआ सूर्यदेव से, और ये जो दान है वो अक्षय तृतीया के दिन उनको मिला। और अक्षय तृतीया के दिन और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इस पर्टिकुलर दिन हुई, तो बोलते हैं कि भगवान ने एक्चुअली जो द्रौपदी की रक्षा की, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो उस समय पर भगवान ने वहां पर उपस्थित होकर अनलिमिटेड साड़ी जो द्रौपदी के लिए प्रदान की, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। तो ये घटना जो है वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुई। और कौन सी घटना है जो अक्षय तृतीया के दिन हुई? तो जो गंगा देवी है, जो हमें पता है गंगा माता, गंगा नदी, उनका जो इस धरती पर प्राकट्य हुआ, इस धरती पर जो उतर कर वो आई, तो वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अक्षय तृतीया के दिन फाइनली गंगा देवी स्वर्ग से उतर कर धरती के ऊपर आई। और ये घटना कहां से शुरू होती है? तो जब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, देवताओं की प्रार्थना से बलि महाराज का मान मर्दन करने के लिए, तो उस समय पर जब वामन देव बलि महाराज की सभा में गए उनके यज्ञ में, तो वामन देव को देखकर बलि महाराज को बड़ा आकर्षण हुआ कि इतना सुंदर बालक, ब्राह्मण बालक, और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूं। तो जो जो ब्राह्मण बालक था, ड्वार्फ ब्राह्मण, राइट, तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे कुछ दान देना ही चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि 3 पग रखने योग्य भूमि मुझे दान में दीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बलि महाराज ने बोला कि जब कोई बड़े राजा के पास आता है तो उसकी क्षमता के हिसाब से मांगना चाहिए, और आप मुझसे सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हो, कुछ और मांगो। वामन देव ने कहा कि अगर कोई अपनी जरूरतों से हिसाब से संतुष्ट ना हो तो उसका मन जितना चाहे उसको जो मर्जी संसार की उपलब्धियां मिल जाएं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। आप मुझे सिर्फ मेरी जरूरत के हिसाब से 3 पग भूमि ही दीजिए। और बलि महाराज ने उस समय पर हाथ में पानी लेकर ये प्रतिज्ञा की कि मैं आपका अपना जो वचन है आपको 3 पग भूमि देने का, उसको पूरा करूंगा। और जैसे ही बलि महाराज ने वचन दिया तो वामन देव ने 3 पग से धरती को नापना शुरू किया। 1 पग में उन्होंने पूरा पृथ्वी मंडल को नाप दिया। और उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, उतना इतना आकार बढ़ाया कि एक पग से पूरे यूनिवर्स को, जो पूरा विश्व है उसको हम नाप दिया, पूरे ग्रह मंडल ब्रह्मलोक तक। और उनके पैर का जो अंगूठा है, इस यूनिवर्स की जो कवरिंग है उसको भेद कर उसके बाहर निकल गया। और जैसे ही उस कवरिंग को भेद दिया इस यूनिवर्स की, तो उसके बाहर से जो कारण सागर का पानी है वो इस यूनिवर्स के अंदर बहने लगा। और जो ये जल है, जो भगवान के चरणों को छूकर, भगवान के चरणों को धोकर इस संसार के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर आने लगा, उसी को गंगा कहते हैं। और उस समय पर ये गंगा देवी स्वर्ग लोक तक पहुंची और स्वर्ग लोक में आकर उन्होंने अपना विश्राम किया। और फिर दूसरी कथा आती है कि कैसे सगर महाराज के जो पुत्र हुए कपिल देव को उन्होंने अपराध करने से मृत्यु को प्राप्त किया। और उनके आगे चलकर जो पुत्र और परपौत्र हुए भगीरथ महाराज, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की कि कैसे मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर पाऊं, इनके अपराधों से कैसे मैं इनको मुक्ति दिला पाऊं। तो उनको बताया गया कि अगर आप अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहते हैं तो गंगा देवी को उतार कर इस धरती पर ले आइए, और जैसे ही गंगा देवी के जल में आपके पूर्वजों की अस्थियों का बहाव होगा तो उनको सब अपराधों से क्षमा मिल जाएगी, उनके अपने सब पापों से क्षमा मिल जाएगी। तो भगीरथ जी ने गंगा देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत घोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर फाइनली गंगा देवी उनके सामने प्रकट हुई और बोला कि मैं आपकी आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं धरती पर उतर कर आऊंगी, पर मेरी एक शंका है कि मेरा वेग इस धरती पर कोई सहन नहीं कर पाएगा, ये धरती मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी और ये पाताल लोक में धस जाएगी। अगर इस मेरे वेग को कोई धारण कर सके तो मैं धरती पर उतर कर आ सकती हूं। तो फिर भगीरथ जी ने शिवजी की आराधना की, भोलेनाथ की आराधना की कि आप गंगा के वेग को अपने ऊपर धारण कीजिए। तो उन्होंने फिर शिवजी की आराधना की और शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूं, जैसे ही गंगा देवी का बहाव इस धरती पर आएगा, कैलाश के ऊपर उनकी धारा गिरेगी, तो मैं उनकी धारा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा और वहां से एक छोटी धारा, कम शक्ति की धारा अपने जटाओं से प्रवाहित करूंगा। और जब शिवजी ने इस तरह से उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया तो फाइनली गंगा देवी उतर कर धरती पर आई और शिवजी ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया। तो इस तरह से जो गंगा देवी का प्राकट्य है इस धरती के ऊपर, इस भूलोक के ऊपर, वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। एक और बहुत अच्छी कथा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं जो कि अक्षय तृतीया के दिन हुई, और वो कथा है भगवान का अपने परम मित्र सुधामा के साथ प्रेम पूर्वक एक्सचेंज, कैसे भगवान ने सुधामा के साथ प्रेम प्रेम आदान प्रदान किया। तो भगवान कृष्ण और सुधामा संदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़े और अपनी शिक्षा को संपूर्ण करने के बाद भगवान वापस मथुरा वापस आए और फाइनली फिर अयोध्या की स्थापना हुई और भगवान अयोध्या में रहने अयोध्या ने द्वारिका की स्थापना हुई और भगवान द्वारिका में रहने लगे। और सुधामा ने भी शादी की, उनकी पत्नी थी, उनके दो पुत्र हुए, तो वो अपनी अपने परिवार के साथ एक गांव में रहते थे। तो सुधामा बहुत ही गरीब थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतना गरीब थे कि उनकी धोती के अंदर भी इतने सारे छेद थे कि हर एक हाथ के बाद उनकी धोती पे एक छेद था। पर उनका एक नियम था कि वो 5 घरों में जाएंगे और वहां से जितनी भिक्षा मिल जाएगी सिर्फ उससे ही अपना भरण पोषण करेंगे। अगर किसी दिन उनको 5 घरों में भिक्षा नहीं मिली तो वो बिना कुछ खाए पिए अपना गुजारा करेंगे। तो कई बार ऐसा होता था कि कई कई दिन उनको भिक्षा प्राप्त नहीं हुई और उनको भूखे रहना पड़ता। तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी उस दिन भूखे रहते, तो उनकी ये दशा को देखकर जो उनकी पत्नी थी उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पति को बोला कि आपके जो मित्र हैं, मैंने सुना है कि जो भगवान कृष्ण हैं, जो द्वारिका के राजा हैं, वो आपके परम मित्र हैं, तो आपको अपने मित्र के पास जाना चाहिए और उनको उन्हें आप अपनी स्थिति के बारे में बताइए, तो वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो सुदामा जी ने बोला कि मैं अपने मित्र के पास जाकर अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, मैं उनसे कुछ अपने लिए मांगना नहीं चाहता। तो उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि चलिए आप मांगने के लिए मत जाइए, सिर्फ आप अपने मित्र को मिलने के लिए चले जाइए, बिना आपके मांगे आपके मित्र आपकी दशा को देखकर आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो सुदामा जी बार बार अपनी पत्नी के अनुरोध पे भगवान कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने बोला कि मित्र के घर जब जाते हैं तो साथ में कुछ उनके लिए भी गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, उनके लिए कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए, और मेरे पास तो इस समय पर श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ उपहार भी नहीं है। तो उनकी पत्नी अपने पड़ोस में जाकर, अलग अलग घरों में जाकर उन्होंने कुछ दक्षिणा की याचना की, तो तीन अलग अलग घरों से थोड़ा थोड़ा चिप्ड राइस, जिसको पोहा हम बोलते हैं, सत्तू, तो वो लेकर आए और एक पोटली में बांधकर उन्होंने सुदामा जी को दिया कि और तो कुछ नहीं है, आप अपने मित्र को ये जो चिप्ड राइस पोहा सत्तू है ये उपहार के स्वरूप दीजिए। तो सुदामा जी वो पोटली अपनी कमर में लटकाकर द्वारका की यात्रा के लिए चल पड़े। इतनी लंबी यात्रा उनके गांव से लेकर द्वारिका तक, और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद काफी दिन लगे जो उनको ये यात्रा संपूर्ण करने में। फाइनली वो द्वारिका में पहुंचे, भगवान के महल के बाहर आए, और महल के बाहर आकर जो द्वारपाल थे उनसे प्रार्थना करने लगे कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल उनको बोल रहे हैं कि आप क्यों मिलना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण हैं वो द्वारिका के राजा हैं और आप देखने में एक भिखारी लग रहे हो, आप क्यों मिलना चाहते हैं, अगर आपको उनसे कुछ भीख चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपको आपकी इच्छा स्वरूप सब कुछ दे देंगे। तो सुदामा जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। तो जब बार बार द्वारपालों ने सुदामा जी से उनका परिचय पूछा, तो सुदामा जी ने बोला कि मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, उनका मित्र हूं। तो सब द्वारपाल उनके ऊपर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे कि आप श्री कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हैं, वो ठहरे एक राजा और आप एक इतने गरीब ब्राह्मण, आपका उनके साथ क्या कंपैरिजन। तो बार बार जब सुदामा जी ने अनुग्रह किया कि नहीं, मुझे एक बार श्री कृष्ण से मिलना है, तो फाइनली एक द्वारपाल श्री कृष्ण के पास उनके कक्ष में गए और उनको बताया कि द्वार के ऊपर एक ब्राह्मण आया है फटे हाल कंडीशन में, उसकी धोती फटी हुई है, एक लकड़ी के सहारे से वह चल रहा है और वो आपसे मिलने की बार बार अनुग्रह कर रहा है, बार बार आपसे मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जब श्री कृष्ण ने सुना कि कोई ब्राह्मण है फटे हाल कंडीशन में, बहुत गरीब ब्राह्मण, सब कपड़े भी उसके फटे हुए हैं, तो सोचने लगे कि कौन हो सकता है ब्राह्मण, और उन्होंने पूछा कि उस ब्राह्मण ने अपना कुछ परिचय दिया। तो जब जैसे द्वारपालों को पूछा गया तो उन्होंने भगवान को बताया कि वो अपना परिचय बता रहे हैं कि वो आपके सखा हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। और जैसे ही भगवान ने सुना नाम सुदामा, बतावत अपना नाम सुदामा, सुदामा का नाम सुनते ही उन्होंने अपना सुध-बुध खो दिया और वहां से उठकर भागे बाहर की ओर। कोई उनको अपने मुकुट पहनने की सुध-बुध नहीं है, कोई उनको अपने जूते पहनने की सुध-बुध नहीं है, और भगवान बिना इस सुध-बुध के बाहर की ओर भागने लगे। बाहर की ओर भागते हुए वो दासियों से टकरा रहे हैं, द्वारपालों से टकरा रहे हैं, उनके वस्त्र कहीं जाके गिर रहे हैं, उनका जो वस्त्र है, उनके जो आभूषण है वो सब बिखर रहे हैं, उनके बाल बिखर रहे हैं, कोई मुकुट नहीं है, और भगवान बिना अपनी सुध-बुध के, सब सुध-बुध खोकर बाहर की ओर भाग रहे हैं। और बाहर आते ही सुदामा 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 पुकारने लगे। उस समय पर भगवान का सुदामा के साथ जो मिलन है, कैसे उन्होंने सुदामा को गले लगाया और कैसे अब उनका हाथ पकड़कर अपने महल के अंदर लेकर आए, भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जो मित्रता है वो अमीरी गरीबी छोटा बड़ा जात पात देखकर नहीं होती। मित्रता का संबंध बहुत गहरा संबंध है। तो सुदामा जी को अंदर लेकर आए, उनको अपना आसन दिया बैठने के लिए, और रुक्मिणी देवी जी से बोला, जो भगवान की पटरानी है, उनको बोला कि सुदामा जी की सेवा करने के लिए प्रबंध किया जाए, इनके चरण धोने का प्रबंध किया जाए, उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन सामग्री का प्रबंध किया जाए, इनके स्नान का प्रबंध किया जाए, इनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रबंध किया जाए। और रुक्मिणी देवी जल का पात्र लेकर आई, और खुद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी सुदामा जी के चरणों में और बैठकर अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। जस्ट विजुअलाइज दैट सीन। लॉर्ड कृष्णा हु इज द मास्टर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, द लॉर्ड ऑफ एवरीबडी, तो वो भगवान स्वयं अपने हाथों से एक गरीब ब्राह्मण सुदामा उनके चरण धो रहे हैं, और सब दास दासियां सब और अन्य उनकी रानियां सोच रहे हैं ये कौन ब्राह्मण है जिनका भगवान श्री कृष्ण खुद इतना आदर सत्कार कर रहे हैं कि उनको अपना आसन बैठने के लिए दिया, उनके चरण खुद अपने हाथों से धो रहे हैं। तो भगवान ने उनके चरण धिलाए, उनको स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, और उनके लिए खूब अच्छी अच्छी भोजन सामग्री का प्रबंध किया। फिर उनको एक कक्ष में लेके गए उनको विश्राम करने के लिए, और प्राइवेसी में जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ उनके कक्ष में हैं, तो उन्होंने मजाक मजाक में सुदामा जी से बोला कि आप मुझे मिलने के लिए आए हो, और मुझे पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं, तो भाभी जी ने जरूर मेरे लिए कुछ उपहार स्वरूप भेजा होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मेरे लिए कुछ उपहार नहीं लेकर आए। और जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास महल में आए, उनके उनकी ये राज वैभव देखकर उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना ये सिंपल सा जो उपहार है चिप्ड राइस का, सत्तू का, वो निकाल कर भगवान को अर्पण कर सके। उनको इतनी ग्लानि अपने आप में अपने आप को तुच्छ समझ रहे थे कि मैं कैसे उनको ये तुच्छ उपहार भेंट करूं, पर भगवान श्री कृष्ण ने मजाक मजाक में उनकी कमर से वो पोटली को छीन लिया, और पोटली को खोलकर देखा कि इसके अंदर सत्तू है, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी भेंट लेकर आए हो। और थोड़े सत्तू लेकर उन्होंने अपने मुंह में डाले और बोला कि ये इससे अच्छा खा भोजन तो मैंने अपने जीवन में कभी खाया नहीं है। तो ये भगवान की भक्तवत, अपने मित्र के प्रति प्रेम, अपने भक्तों के प्रति भगवान का जो भाव है वो दर्शा रहा है। जैसे भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त को जिस चीज की कमी है मैं उसको उपलब्ध करवाता हूं, और जो मेरे भक्त के पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान जैसे जैसे वो सत्तू को खा रहे हैं एक एक मुट्ठी में लेकर, साथ ही साथ वो सुदामा को सब कुछ उपलब्ध करवाते जा रहे हैं बिना सुदामा की जानकारी के। तो बिना सुदामा के मांगे भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, और भगवान उसको बताना भी नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए सब उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि उसको ग्लानि ना हो, उसको ऐसा ना फील हो कि मेरे ऊपर कुछ उपकार कर रहे हैं या मेरे ऊपर कुछ ही इज डूइंग सम फेवर अन टू मी। तो बिना उनको जानकारी के भगवान ने सुदामा जी की सब जरूरतें पूरी कर दी, उनके लिए बड़े महल का प्रबंध कर दिया, उनकी पत्नी उनके बच्चे सब नए नए वस्त्रों में अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर एक अमीर व्यक्ति की तरह रहने लगे। तो ये सब जो घटना है भगवान की अपने भक्त के साथ आदान प्रदान, सुदामा जी के साथ भगवान का आदान प्रदान, जो सुदामा जी की करना और उसके फलस्वरूप सुदामा तो ये जो लीला है ये भी अक्षय तृतीया के दिन हुई। अक्षय तृतीया के दिन और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की हर वर्ष यात्रा निकलती है, जो सामूहिक यात्रा पब्लिक में भगवान बाहर अपने गर्भगृह से निकलकर बाहर आते हैं और रथ में विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। तो ये जो रथ यात्रा होती है उसके लिए भगवान के जो रथ बनाए जाते हैं, तो रथ बनाने का जो कार्य है वो अक्षय तृतीया के दिन आरंभ होता है। तो एक्चुअल रथ यात्रा से ऑलमोस्ट 1-1.5 मंथ पहले, 1-1.5 महीना पहले भगवान का रथ बनाने का जो कार्य है वो आरंभ होता है, और वो कार्य अक्षय तृतीया के दिन आरंभ होता है। और जो भगवान की चंदन यात्रा है, चंदन यात्रा लीला, वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुई। उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा पास टाइम है कि भगवान की ये चंदन यात्रा के संबंध में क्या लीला हुई। हम सुनते हैं माधवेंद्रपुरी जो भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन में रहकर अपना भजन करते थे, और एक दिन अपने भजन में जब अपनी समाधि में लीन थे तो उनको भगवान ने दर्शन दिया और बताया कि मैं इस झाड़ियों के अंदर विराजमान हूं। मुझे पुजारी जी ने यवनों के भय से, जब यवन के आक्रमण होते थे मंदिरों को तोड़ने के लिए, तो मेरी विग्रह को मंदिर से निकालकर ये झाड़ियों के बीच में भूमि के अंदर छुपा दिया था। तो अभी भी मैं उस जगह पर विराजमान हूं और गर्मी की वजह से मेरा शरीर तप रहा है, आप मुझे वहां से बाहर निकालिए और मेरी स्थापना कीजिए मंदिर में। तो माधवेंद्रपुरी को जब ये दर्शन आया, उन्होंने गांव वालों को बुलाकर इसके बारे में बताया और सब गांव वालों को लेकर उस जगह पर पहुंचे। झाड़ियों को हटाया गया और उस जगह को खोदकर उनको वाकई से वहां पर से गोपाल जी की एक विग्रह प्राप्त हुई। तो माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की गोवर्धन के ऊपर स्थापना करने के लिए इच्छा व्यक्त की और सब गांव वालों ने समर्थन में गोपाल जी की स्थापना के लिए खूब प्रबंध किया वहां पर। तो उस समय पर खूब बड़ा उत्सव हुआ, खूब छप्पन भोग का प्रबंध किया गया, सब गांव वासियों ने अपने अपने घरों से सब पूरी सामग्री लेकर आए और गोपाल जी के को अर्पण किया। तो इस तरह से गोपाल जी की स्थापना हुई। और कुछ समय बीतने के बाद गोपाल जी फिर से माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए और उनको बोला कि आपने मेरी यहां पर स्थापना तो कर दी है, पर अभी भी मेरे शरीर के अंदर मुझे बहुत गर्मी की अनुभूति हो रही है, बहुत गर्मी फील हो रही है। आप मेरे लिए माल्य पर्वत से चंदन लेकर आइए और उस चंदन का लेप मुझे लगाइए ताकि मुझे ठंडक मिले। तो जब इस तरह से भगवान ने इच्छा प्रकट की, तो माधवेंद्रपुरी भगवान की इच्छा प्रकट करने के लिए चंदन की लेने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। और उस समय पर माधवेंद्रपुरी की जो आयु थी काफी ज्यादा आयु थी, काफी वृद्ध थे वो, और उस स्थिति में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा इस वृद्धावस्था में, मैं इतनी दूर की यात्रा कैसे तय करूंगा और कैसे इतना भारी बोझ लेकर, माल्य चंदन लेकर वापस वृंदावन आऊंगा। तो ये जो बात है आज से 500-600 वर्ष पूर्व की बात है, और उस समय पर इतने कोई साधन नहीं थे, कोई ऐसी रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे कोई हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं थी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से जा सके। और ज्यादातर जो सफर होता था, जो यात्रा होती थी, वो चलकर करनी पड़ती थी, पैदल चलकर। तो माधवेंद्रपुरी जी फिर भी उसके लिए तैयार हो गए कि मैं अपनी जो भी मेरी स्थिति है, वृद्धावस्था है, पर फिर भी भगवान की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं। तो माधवेंद्रपुरी जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास कि कैसे भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और उस समय पर दो ब्राह्मण साउथ इंडिया से आए कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, हमें अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। तो माधवेंद्रपुरी जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको गोपाल जी की जो सेवा है वो देकर खुद चंदन लेने के लिए यात्रा प्रारंभ की। तो रास्ते में जब जा रहे थे इस चंदन यात्रा के लिए, चंदन लेने के लिए, तो रास्ते में रेमुना पड़ा। रेमुना भी एक ऐसा बहुत अच्छा स्थान है जिसको गुप्त वृंदावन बोलते हैं, और इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत अच्छा विग्रह है, गोपीनाथ। तो जब जी रेमुना में उस गोपीनाथ मंदिर में आए, गोपीनाथ की सेवा होते हुए देखी तो उनको बड़ा संतोष हुआ कि कैसे गोपीनाथ जी की बहुत अच्छे से सेवा की जा रही है। तो जो गोपीनाथ मंदिर के पुजारी थे वो गोपीनाथ को एक बहुत अच्छा खीर बनाकर भोग में लगाते थे, उसको बोलते हैं अमृत केली। तो खीर के 12 पात्र भगवान को भोग लगाए जाते थे, और माधवेंद्रपुरी जी ने जब उस अमृत केली भोगा जो भगवान को लगाया जाता है गोपीनाथ जी को, उसके बारे में सुना तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि काश मैं ये थोड़ा खीर को चख सकूं ताकि मुझे पता चल सके इसका क्या टेस्ट है, इसके अंदर क्या-क्या डाला गया है, तो मैं भी वापस जाकर गोपाल जी को ऐसा भोग लगा सकूं। पर जब माधवेंद्रपुरी जी के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई, उस समय पर गोपीनाथ जी को भोग लगाया जा रहा था, और माधवेंद्रपुरी जी के हृदय में ये बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूं कि जब भगवान को भोग लगाया जा, भगवान चखने की इच्छा प्रकट कर रहा हूं, मेरे जैसा निमन व्यक्ति कौन हो सकता है। और उसी समय को से बाहर निकल मंदिर को छोड़कर वहां से चले गए। पर भगवान अपने भक्त के हृदय में जो है उसको अच्छी, अपने भक्त की भक्त है उसकी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। तो गोपीनाथ जी ने बड़ी अद्भुत लीला की उस समय पर, उन्होंने एक खीर का पात्र उठाकर अपने वस्त्रों के पीछे छुपा लिया, और पुजारी जी जब बाद में भोगा को हटाने के लिए आए, उन्होंने पर्दा हटाया और सब पात्र जो हैं उनको वापस लेकर अपने कक्ष में आ गए, भगवान का भोग निकाला और रात को अपना विश्राम करने के लिए चले गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक पात्र कम भी है, और रात में स्वप्न में पुजारी जी को गोपीनाथ जी ने दर्शन दिया, और उन्होंने बताया कि मैंने जो आज भोगा मुझे अर्पण किया गया था उसमें से एक पात्र यहां से छुपा लिया था, और मेरा एक भक्त है, मैं चाहता हूं कि आप इसे उनके पास लेकर जाएं और उनको प्रदान करें। और जब पुजारी जी को भगवान ने ये स्वप्न में दर्शन दिया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो उसी समय पर उठे, नींद से स्नान किया और भगवान के जो मंदिर का गृह था वहां पर गए, देखा वाकई भगवान के कपड़ों के पीछे एक खीर का पात्र रखा हुआ है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, खीर का पात्र लिया और इमीडिएटली वो रेमुना में जो बाजार है वहां पर गए और पुकारने लगे, यहां पर कोई माधवेंद्र क्या, यहां पर कोई माधवेंद्रपुरी नाम का व्यक्ति है क्या? तो माधवेंद्रपुरी जी सामने आए कि मैं ही माधवेंद्रपुरी हूं, क्यों आप मुझे ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने बोला आपके जैसा उच्च श्रेणी का भक्त कौन हो सकता है, गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर का पात्र चुराया। तो उन्होंने जो खीर का पात्र था माधवेंद्रपुरी जी को भेंट किया कि आप इसे स्वीकार कीजिए, भगवान ने स्पेशली आपके लिए इस खीर के पात्र को बचाकर रखा। और माधवेंद्रपुरी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर साथ ही साथ उनको ये ग्लानि भी हो रही थी कि भगवान को मेरे लिए ये लीला करनी पड़ी, और उनको उस प्रसाद के प्रति इतना भाव था कि वो थोड़ा थोड़ा वो खीर का जो खीर था उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते थे, और खीर के समाप्त होने के बाद जो पात्र बचा, खाली पात्र जो मिट्टी का पात्र होता है, उसको भी वो फेंकना नहीं चाहते थे, उसको भी भगवान का प्रसाद समझते थे, और उसको भी तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बचाकर रखा, और उसका भी एक एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे वो। और उसके बाद रेमुना से आगे उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, उड़ीसा जाने के लिए मल्लय पर्वत से जो चंदन है वो लेकर आने के लिए गोपाल जी के लिए, और वहां पर भी उड़ीसा के राजा ने उनके लिए व्यवस्था की, उनको चंदन प्रदान किया, और साथ में रस्ते में ताकि उनको कुछ रुकावट ना हो उन्होंने अपने सेवक साथ में भेजे चंदन लाद कर लेकर जाने के लिए, और उनको कुछ दक्षिणा भी दी कि जो रस्ते में कर देना पड़ेगा, जो पर आपको कोई परेशान ना करे। तो भगवान की कृपा से ये सब प्रबंध हुआ, और माधवेंद्र पुरी जी जैसे ही वो चंदन लेकर आ रहे हैं, रेमुना पड़ता है, तो रास्ते में रेमुना में फिर से रुके गोपीनाथ मंदिर में, और जैसे माधवेंद्र पुरी जी गोपीनाथ मंदिर में रुके हुए हैं तो गोपाल जी ने उनको फिर से स्वप्न में दर्शन दिया, और स्वप्न में दर्शन स्वरूप उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी से प्रार्थना की, प्रार्थना नहीं उनको बोला कि आपको इतना सब जो चंदन है, भारी चंदन, उसको वृंदावन तक वापस लेके आने की आवश्यकता नहीं है, मैं और गोपीनाथ अभिन्न है, मुझ में और गोपीनाथ में कुछ भेद नहीं है, तो आप ये जो चंदन है उसका लेप बनाकर आप रोज गोपीनाथ जी को लगाइए और उससे मेरे अंदर भी ठंडक प्राप्त होगी, आप ये जो चंदन है गोपीनाथ जी को भेंट कीजिए। तो माधवेंद्र पुरी जी ने भगवान का आदेश स्वीकार करके उस समय पर चंदन का लेप बनाकर गोपीनाथ जी को लगाना प्रारंभ किया, और जिस दिन से ये लीला प्रारंभ हुई, भगवान के लिए गोपी चंदन का लेप लगाने की जो लीला शुरू हुई, तो वो पहला दिन जो है वो अक्षय तृतीया के दिन आता है। तो उस समय पर जो ये परंपरा आरंभ हुई भगवान को गोपी ये चंदन का लेप लगाने की, पूरे भगवान के विग्रह को चंदन का लेप ऊपर से नीचे तक, तो वो आज भी चलती है। आज भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान को खूब चंदन का लेप लगाया जाता है। वृंदावन में भी मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर में, रेमुना में, जगन्नाथपुरी में, तो भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, उसको बोलते हैं चंदन यात्रा, जो 9 दिन तक चलती है, और उसका जो पहला दिन है वो अक्षय तृतीया के दिन पर शुरू होता है। तो इतनी अच्छी अच्छी अद्भुत लीलाएं इस अक्षय तृतीया के दिन पर हुई। और भी एक बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनका हम वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कुबेर, कुबेर को बोलते हैं कि जो देवी देवताओं के खजांची हैं, देवी देवताओं के जो ट्रेजरर हैं, तो कुबेर जी को जो अपनी पदवी है वो भी अक्षय तृतीया के दिन मिली। अक्षय तृतीया के दिन उनको प्रजापति बनाया गया कि वो उनके देवताओं के धनाढ्य बनेंगे, उनके खजांची बनेंगे। और अक्षय तृतीया के दिन व्यासदेव जी ने महाभारत और भागवतम लिखने का कार्य प्रारंभ किया। तो जब व्यासदेव जी ने ये इच्छा प्रकट की कि मैं महाभारत को लिपिबंध करना चाहता हूं, उसको लिखना चाहता हूं, पर महाभारत इतना विशाल है, इतना विस्तार में है, और उसको लिखने के लिए बहुत समय लगेगा, अगर मुझे खुद लिखना भी पड़ेगा और साथ साथ में सोचना भी पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारे समय लगेगा, तो उस समय पर उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि आप लिखने का कार्य कीजिए, मैं आपको नरेट करूंगा। तो गणेश जी को स्टेनो राइटर की पदवी पर बिठाया गया कि वो लिखने का कार्य करेंगे और व्यासदेव जी बोलते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे। तो जब गणेश जी को इस कार्य के लिए बुलाया गया, गणेश जी ने बोला मैं आपकी आपके कार्य में भागीदार बनूंगा, पर मेरी एक शर्त है, जब मैं लिखूंगा तो आपको कंटिन्यूअसली बोलते जाना है, आपका शब्द रुकने नहीं चाहिए। तो व्यासदेव जी ने उनकी ये शर्त स्वीकार की कि मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है कि लिखने से पहले आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, समझिए फिर लिखिए। तो गणेश जी ने उनकी शर्त भी स्वीकार किया, बोलना आरंभ किया, और गणेश जी ने उनको लिपिबंध, जब उनको कुछ होता था कठिन शब्दों का प्रयोग कर, गणेश जी को कुछ समय लगे सोच उसको समझने में, फिर लिखने में, और मुझे समय मिलेगा नेक्स्ट सोचने के लिए। तो जो महाभारत को लिखने का कार्य आरंभ हुआ वो अक्षय तृतीया के दिन ही आरंभ हुआ। तो अक्षय तृतीया की जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको बोलते हैं इस दिन पे बिना कुछ मुहूर्त देखे कोई कार्य किया जा सकता है और उसका अक्षय फल होगा। तो इसलिए लोगों के मन में यह भाव होता है कि इस दिन हम कुछ भी कार्य करें उसका नाश नहीं होगा, कहते हैं कि हम कुछ भौतिक कार्य करना चाहते हैं, जैसे कुछ सोने को सोना खरीदना, कुछ आभूषण खरीदना, कुछ घर को खरीदना, या कुछ इस तरह से बर्तन को खरीदना, तो इस तरह के कार्य लोग अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा हमें आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए, कुछ दान में देना, कुछ ज्ञान के कार्य में लगना। एक्चुअली पद्म पुराण के हिसाब से देखा जाए तो पद्म पुराण में बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन पे सोने का दान देना चाहिए। वन शुड गिव गोल्ड इन चैरिटी। कलयुग हु है इसके पास इतनी क्षमता है कि सोने को दान में दे सके, और लोगों ने ये भावना बना लिया कि इस दिन पे एटलीस्ट चलो सोना खरीद घर पे और उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। है इसके अक्षय तृतीया के दिन पे जो भी कार्य किया जाए उसका फल कभी खत्म नहीं होगा। तो लोग इस तरह से भौतिक कार्यों में लगना चाहते हैं। जनरली जो लोगों की प्रवृत्ति है वो है अपना खुशी के लिए कार्यरत होना। दे वॉन्ट टू बी हैप्पी, दे वॉन्ट टू डू द एक्टिविटीज टू मेक देमसेल्फ हैप्पी। लोग खुशी प्राप्त करने के लिए होटलों में जाते हैं, खाना खाने के लिए लोग पब्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं। तो जो जो भौतिक कार्य हैं, खाना, नाचना, गाना, इन कार्यों के माध्यम से लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, पर इन कार्यों में कभी भी आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन कार्यों का जो लिमिटेड है वो हमेशा नाशवान है, वो कभी उसका रिजल्ट अक्षय नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक जगत ही नाशवान है, इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और उस आध्यात्मिक और भौतिक कार्यों को करने में जितना मर्जी जोर शोर से उस कार्य को किया जाए उसमें कभी भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे भौतिक जगत में लोग डिस्को में जाते हैं नाचने के लिए, पब्स में जाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, और उसमें कभी भी उनको आनंद प्राप्त नहीं होगा। आध्यात्मिक जगत में भी हम लोग वही कार्य करते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम भी भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, हम भी भगवान के लिए गाते हैं। दोनों कार्य भौतिक दृष्टि से सेम हो सकते हैं, खाना, नाचना, गाना, पर दोनों में जो कॉन्शियसनेस है, जो सोचने का स्तर है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ से भगवान जो भोजन भक्त लोग ग्रहण करते हैं, पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, फिर उसको भगवान के किया जाता है। भक्त लोग भगवान के कीर्तन में, मंदिरों में कीर्तन में नाचते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे भगवान की मंगल आरती होती है और उस पे भी भक्त लोग बड़े जोर शोर से नाचते हैं। पर एक भौतिकवादी को बोला जाए कि आप सुबह उठकर नाच नाचो, भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे ही नाच नहीं सकता। उनको पहले नाचने के लिए इंटॉक्सिकेटेड होना पड़ेगा, उनको पहले नशा करना पड़ेगा, फिर जाके उनके अंदर नाचने की क्षमता आएगी। जैसे शादी विवाह में भी देखा जाए तो लोग खूब नाचते हैं शादियों में, पर नाचने के लिए उनको लगता है कि पहले हमें थोड़ा कुछ नशा करना पड़ेगा, कुछ ये विस्की वाइन ये सब पीना पड़ेगा ताकि हमारे अंदर थोड़ा नशा है, भावना है, तब हम जाके नाच पाएंगे। ये बहुत साल पहले की बात है, मैं अपने एक कजन की मैरिज में गया। वहां पर सब लोग जैसे नाच रहे हैं तो मैंने अपने एक और कजन को बोला कि हम भी नाचते हैं, तो उसने बोला अरे ऐसे थोड़ा जोश जोश नहीं आएगा नाचने का, तो नाचने के लिए पहले मुझे थोड़ा ड्रिंक करना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा भाव आएगा नाचने के लिए। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनको नाचने का इतना जोश नहीं आता, पर भक्त लोग भगवान के कीर्तन में नाचते हैं। ये भगवान का जो कीर्तन है उनके लिए वो ही एक नशा है। तो भौतिकवादी व्यक्ति भी वही सब कार्य कर रहा है, पर उनकी कॉन्शियसनेस सिर्फ उन कार्यों में भौतिक स्तर पर आनंद प्राप्त करने की है, जो कि कभी हासिल नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति आध्यात्मिक करना चाहता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, और उसमें वो सब बाय डिफॉल्ट उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान का नाम जप, भगवान के लिए दान देना चाहिए, और दान भी हम जैसे भगवद गीता में पढ़ते हैं, दान भी तीन मोड्स में दिया जा सकता है, सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो वन एक हमें देखना चाहिए कि हम जो दान दे रहे हैं वो किस भावना से दे रहे हैं। जो तमोगुण में दान दिया जाता है वो इस प्रवृत्ति से दिया जाता है कि मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दान दे रहा हूं। उसने इतना दान दिया तो मैं उससे ज्यादा दान दूंगा। तो ये प्रवृत्ति जब होती है कि दान देने के लिए या अपने आप का गुणगान करने के लिए दान देने के लिए, वो दान सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है, तमोगुण में माना। भगवान से कुछ प्राप्त करने कि मैं आपको 10 रुपए चढ़ा रहा हूं, मुझे बदले में 1 लाख रुपया चाहिए, मैं आपको 1 नारा चढ़ा रहा हूं, बदले में मुझे खूब संपत्ति चाहिए। तो जो अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए भगवान से कुछ मांगने के लिए दान दिया जाता है वो है रजोगुण में दिया जाने वाला दान। और सत्वगुण में जो दान दिया जाता है वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, यथाउचित पात्र को यथाउचित समय पर बिना किसी फल की इच्छा से जो दिया जाने होते सत्व दान। ऐसे दिया जाना चाहिए कि एक हाथ से दान दिया तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि क्या दान दिया गया। लोग दान देंगे और वो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि देखिए हमने ये पंखा दान दिया है मंदिर के कमरे में लगवाने के लिए, और इसके ऊपर हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। ने ये भगवान के लिए अच्छा सा मार, इसके ऊपर भावना नहीं होनी चाहिए। दान दिया जाना चाहिए सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और जो भी दान दिया जाता है भगवान वो समय हम देख रहे हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें भगवान उसका यथाउचित फल आपको अवश्य देंगे। जैसे सुदामा जी की कथा में सुदामा जी ने थोड़ा चिप्ट राइस सत्तू भगवान को दिया और भगवान ने उसके बदले में बिना उनके मांगे, बिना उनको जताए, सब उनको ऐश्वर्य प्रदान किए। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें ये दान का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम भौतिक दृष्टि से दान नहीं दे सकते, हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम कुछ दान दे पाए, तो फिर भी हमें मन की अवस्था में दान देना चाहिए। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हम मन से भी दान दे सकते हैं। आप रोज आप सुबह उठिए और मन में संकल्प कीजिए कि आज मैं ब्राह्मणों को 10 गाय दान में दे रहा हूं, आज मैं 10 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा हूं, आज मैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये कर रहा हूं। तो मन में भी अगर ये संकल्प लिया जाए, मन के थ्रू भी कुछ दान दिया जाए, तो उसका भी फल मिलेगा। उसका क्या फल है कि धीरे धीरे अगर हम अपने मन से देना सीख लेंगे तो धीरे धीरे हाथ से देना भी सीख जाएंगे। और भगवान तो बोलते हैं कि कोई भी मुझे कुछ भी अर्पण करता है, अगर प्रेम पूर्वक मुझे कुछ भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। और भगवान क्या मांग रहे हैं? भगवान कुछ हमसे ये नहीं मांग रहे कि मुझे कुछ हीरे जवाहरात दो, अच्छी अच्छी वस्तुएं दो। भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई मुझे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से एक पत्र, पुष्प, फूल, जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ बोले अच्छा भगवान ने पत्र पुष्प बोला, चलो भगवान को एक पत्र ऑफर कर दिया और हम अपने लिए अच्छे अच्छे समोसे, कचौरी, गुलाब जामुन बना के खा रहे हैं। तो हमारा भाव होना चाहिए जो भी हम अपने लिए बना रहे हैं वो पहले भगवान के लिए बनाए, वो भगवान को अर्पण करें और फिर भगवान के प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का महत्व हमें समझना चाहिए और भगवान की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए, भगवान की भक्ति में जुड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन पे हम कुछ भी नए कार्य है भगवान की सेवा में शुरू कर सकते हैं, भक्ति में कुछ भी नए कार्य शुरू कर सकते हैं। हम आज से संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज से भगवान के नाम का जप करना शुरू करूंगा, या मैं भगवान के नाम का जप 4 माला कर रहा हूं तो आज से मैं 6 माला करूंगा, आज से मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ करूंगा, भक्तों का संग करना आरंभ करूंगा, भक्तों की सेवा करने का संकल्प लेना। तो इस तरह का संकल्प लेना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, जिसका फल नाशवान नहीं है, वो रियल में अक्षय है, जब हम आध्यात्मिक स्तर पे कुछ करना चाहें भगवान के लिए। सो द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ अक्षय तृतीया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सो थैंक यू वेरी मच। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस कमेंट्स प्लीज फील फ्री टू शेयर। हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद।
बढ़िया क्लास, आई डिडंट रियलाइज इट इतना इम्पोर्टेंट दिन है आज।
नाउ यू नो प्रभु,
तो जो पहले वाले दो बताए थे आपने, खाली वो गंगा का पता था, एक दो पता था हमें, लेकिन आई डिडंट रियलाइज दैट इट इज सच ए इम्पोर्टेंट डे।
वी डिस्कस दिस पास्ट टाइम्स ऑल दिस कथा एवरी ईयर ऑन अक्षय तृतीया। इट्स जस्ट दैट वी फॉरगेट, राइट? दैट इज द ह्यूमन नेचर। हमारी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो ये है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बार बार सुनते रहें।
प्रभु इसी नाम पे मैं भी प्लीज कैन आल्सो डू दैट फॉर दिस ऑस्पिशियस डे, वन एक्स्ट्रा राउंड ऑफ जपा।
हरे कृष्ण प्रभु, वेरी नाइस।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, जिस सुवर्ण वाले था।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।
Yeah, Prabhu, very nice Nectarian class, Prabhu, and this is the best example for the people in massive who follow Vedic culture in the wrong way.
Yeah.
Very, very kind, completely Nectarian class, Prabhu. Thank you very much, Prabhu.
Thank you, Prabhu. Hare Krishna.
Yeah. So, yeah, Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Krishna,
Keshav
Rathi, Hare Krishna, Keshav Rathi, Prabhu.
Very, very nice, and a lot of great examples. Very exciting.
Thank you, Prabhu. So after hearing, we should absorb that, right? From ears to heart. तो कानों से सुन के उसको अंदर हमें अपने हृदय तक लेकर जाना है, ताकि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ सके, हम उसको हृदय से धारण कर सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। थैंक यू
भगवान की ब्लेसिंग ऑलवेज साथ रहे, तो
जी
पॉसिबल
जी भगवान की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। हमें जो भी क्षमता दे रहे हैं भगवान ही दे रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स?
हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा क्लास। एक्चुअली मैंने लास्ट में ही सुना, आई जस्ट लॉक्ड इन फ्यू मिनट्स अगो, बट आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली आपका जो लास्ट ईयर का क्लास जो था अक्षय तृतीया पर, उसके पूरे अपने पास्ट टाइम्स का काफी डिटेल वर्णन किया था। और अब की बार मैंने जो लिसन किया वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने दान के बारे में बोला, दान भी किस तीन तरीके से आप कौन सी प्रवृत्ति से करते हैं वो मैटर करता है। सो दैट पार्ट किस कॉन्शियसनेस से हम लोग कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी कैन बी डन इन थ्री डिफरेंट वेज एंड दैट विल डिसाइड are actually karmic actions again. So thank you Prabhuji for guiding us on that. Hare Krishna.
Thank you Mataji. Hare Krishna. So if no other questions or comments, we will end here. Srila Prabhupada ki jai, Anand Koti Vaishnav Vrind ki jai. Hare Krishna.